चतुर्थ अध्याय। आधुनिक हिंदी लेखिकाओं की रचनाशीलता, यथार्थ और यथार्थ बोध। पृष्ठ संख्या 39। उपन्यास की अवधारणा में जीवन की वास्तविकता चित्रित करने की बात अनिवार्यतः शामिल है। यथार्थवाद जैसी अवधारणा का पूरा विकास ही उपन्यास जैसी साहित्यिक विधा को केंद्र में रखकर हुआ है। यहाँ यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि वास्तविकता का यथावत कथन रचना का यथार्थ नहीं होता। यथार्थ को समझने और व्यक्त करने के लिए रचनाकार की दृष्टि संपन्नता अनिवार्य होती है, अन्यथा वह यथार्थ को जीवन की समग्रता या उसकी पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया में नहीं समझ सकता। ज्यादातर रचनाकारों में जीवन की तमाम मुद्राओं, चीजों के अनुभव की संवेदनशीलता तो होती है, किंतु उनके अंतर्निहित तर्कों या प्रक्रियाओं में समझने का विवेक नहीं होता। रचना के लिए सदैव यथार्थ के वस्तुगत रूप ही मान्य होते हैं। इसके लिए रचनाकार के भीतर चीजों को उनकी वस्तु परकता में देखने का विवेक अनिवार्य होता है और इसे वैचारिक अंतर्दृष्टि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। रचना के यथार्थ की स्थिति रचनाकार के अपने आत्म संघर्ष पर निर्भर होती है। अनेक बार उसकी वर्गीय सोच और संवेदना उसकी सीमा बन जाती है। ज्यादातर हिंदी लेखिकाओं की यह सीमा रही है। इन्हें मध्यवर्गीय बोध का रचनाकार कहा जा सकता है। उनमें चीजों की अवरूढ़ता को पहचानने का विवेक तो है, किंतु उससे संघर्ष का साहस नहीं है, क्योंकि जीवन के परिवर्तन और विकास में रचने वाले मूल्यों और आदर्शों के लिए उनका संघर्ष नहीं के बराबर है। कुछ लेखिकाएं यथार्थ के वस्तुगत रूपों के लिए संघर्ष करती दिखाई देती हैं। उनमें मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और ममता कालिया का नाम लिया जा सकता है। मृदुला गर्ग, मेहरुन्निसा परवेज या निरुपमा सेवती जैसी लेखिकाओं में यथार्थ बोध दृष्टि के तहत न होकर एक प्रकार की रूमानी सम्मोहन के तहत दिखाई देता है। पैराग्राफ चेंज। एक इंच मुस्कान का यथार्थ मध्यवर्गीय और विचारशील स्त्री पुरुषों के प्रेम के त्रिकोण का यथार्थ है। रंजना का व्यक्तित्व एक मध्यवर्गीय स्त्री को लेकर निर्मित किया गया है। मध्यवर्गीय परिवार में प्राचीन मूल्यों के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। प्रेम विवाह और काम संबंधों को लेकर भी मध्यवर्गीय समाज नए सामाजिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई नहीं देता। पृष्ठ संख्या 40। परंतु जब परिस्थितियों की कटुता उसकी निजी अस्मिता को ध्वस्त करने लगती है, तो वह अपनी आस्था को ठुकराकर प्रेम का विकास निजी स्तर पर करता है। रंजना मध्यवर्गीय समाज की विसंगतियों का शिकार होती है। अमर से विवाह करने में उसे पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ता है, परंतु वह विद्रोह करके अमर से विवाह कर अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान युग की शिक्षित व स्वावलंबी नारी विवाह और पति का संदर्भ सिर्फ साहचर्य नहीं मानती, अपितु वह पति के जीवन में पूर्ण समानता तथा उसके प्यार पर अपना एकाधिकार भी मानती है। रंजना अमर के प्रति पूर्ण समर्पित है। प्रतिदान स्वरूप वह भी अमर की पूर्ण निष्ठा तथा प्यार प्राप्त करना चाहती है, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं होती। विवाह के पश्चात अमर अमला से प्रेम करने लगता है। अमला के विवाहित होने पर भी वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस कारण रंजना और अमर में तनाव उत्पन्न हो जाता है। रंजना अपने प्यार का अपमान समझकर प्रतिरोध की अग्नि में जलने लगती है। वह व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व तो देती है, किंतु अमर व किसी युवती का प्रेम नहीं देख सकती, अतः दोनों में दरार पड़ जाती है। रंजना में मध्ययुगीन नारी के संस्कार तथा आधुनिक युग की नारी की स्वतंत्रता दोनों दिखाई देती है। अमर से विवाह कर अपनी स्वतंत्र विचारधारा और अमला अमर की दोस्ती को न स्वीकार कर मध्ययुगीन संस्कारों की विचारधारा को स्पष्ट करती है। वह सोचती भी है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह मित्र क्या चीज है, या तो पत्नी होती है या बहन भाभी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। पृष्ठ संख्या 196। इस प्रकार स्त्री पुरुष की मित्रता का उसकी विचारधारा में कोई स्थान नहीं। पैराग्राफ चेंज। प्रारंभ में हम रंजना को विचलित स्त्री के रूप में पाते हैं, परंतु उसके ये अश्रु भी अमर के प्रति उसके असीम अनुराग के ही परिचायक हैं। अमर के सुख के लिए वह अपना सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहती है। उसके संबंधों के प्रति वह अत्यंत भावुक भी है। इस कारण अमला अमर का मिलना वह नहीं सह पाती और सदा के लिए अमर को छोड़ देती है। वह सोचती भी है कि प्रेम के अभाव में अमर का बोझ क्यों बने। रंजना को देखने पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह उभर कर आता है कि आज की शिक्षित व स्वावलंबी नारी विवाह को स्थायी बंधन न मानकर एक प्रकार का समझौता मानने में अधिक विश्वास करती है। यह समझौता दोनों पक्षों की सहमति से ही स्थायी होता है। कोई एक पक्ष किसी कारणवश कमजोर पड़ जाए तो वह प्यार संदेह घृणा प्रतिशोध में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उस समझौते को समाप्त कर देना ही अधिक उचित है। इसके लिए सामाजिक परंपराओं का पालन आवश्यक नहीं। यही कारण है कि जिस प्रकार अमर के प्यार में रंजना ने अपने परिवार के विरोध को कोई महत्व नहीं दिया, उसी प्रकार अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सामाजिक मान्यताओं की अवहेलना कर पुनर्विवाह करके अपने साहस का परिचय देती है। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार इस सारी रचना में वास्तविकता दिखाई देती है, इसमें आदर्श भी दिखाई देता है। जब रंजना अजय और अमला का प्रेम नहीं स्वीकारती तब वहाँ आदर्श दिखाई देता है। अतः यहाँ ये तीनों प्रमुख स्त्री और पुरुष अपने मन की आकांक्षाओं और असंगतियों की पहचान करते दिखाई देते हैं। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 41। आपका बंटी का यथार्थ आधुनिकता से एक प्रकार से ग्रस्त रुग्ण परिवार में बच्चे की समस्या पर केंद्रित है। यह चित्रित स्त्री पुरुष अपनी व्यक्तिवादी मनोवृत्ति के चलते बच्चे की स्वाभाविक आकांक्षाओं को समझने में असमर्थ दिखाई देते हैं। यह एक सामाजिक समस्या है, नारी के आर्थिक स्वतंत्रता से उत्पन्न है। शिक्षा, नारी मुक्ति आंदोलन आदि ने नारी की सोच को बहुत गहराई तक प्रभावित किया, परंतु पुरुष की पारंपरिक विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। आज की नारी अपनी व्यक्तित्व को मिटाकर पुरुष के साथ सामंजस्य बनाए रखने में कोई औचित्य नहीं समझती। आज वह सब पा लेना चाहती है जो पुरुष ने अपने लिए सहेज रखे थे। इस उपन्यास में अजय शकुन के अहम टकराव के कारण ही संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हुई। इस संबंध को टूटने से बचाने के लिए वकील चाचा शकुन को सुझाव देते हैं कि ओपन अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सकोगी। अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। ". संदर्भ आपका बंटी, मन्नू भंडारी, पृष्ठ संख्या 76। शकुन का स्वाभाविक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण उसे संबंध विच्छेद करने में कोई परेशानी नहीं होती। आर्थिक दृष्टि से पराधीन नारी अपने व्यक्ति स्वातंत्र के लिए विद्रोह का साहस नहीं दिखा पाती। आधुनिक नारी का आंतरिक द्वंद पति के साथ बनते बिगड़ते संबंधों को इस उपन्यास में उजागर किया गया है, किंतु अजय व शकुन का एक बच्चा भी है। इस बच्चे के विषय में कोई कुछ नहीं सोचता कि उसकी मानसिकता क्या होगी। मन्नू जी स्वीकारती है ". मुझे लगा कि बंटी दो एक घरों में नहीं आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में, कहीं सहमा हुआ तो नहीं उदंड। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह यह कि वे सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे साँचे में ही आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक सामने आने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। ". संदर्भ ग्रंथ मन्नू भंडारी, आधुनिक हिंदी उपन्यास, संपादक भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 278। जब लेखिका की संवेदनशीलता एक व्यक्ति के दुख दर्द को अपनी सहभागिता में पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में देखने लगती है, तो इस व्यथा कथा का चित्रण उसके मूल से न तो काट कर किया जाता है और न ही पूरे समाज का अध्ययन करके ही इस समस्या को उजागर किया जा सकता है। फलतः समस्या को रचनात्मक धरातल देकर उसके रूपों को उभारा जा सकता है। तलाक के पश्चात शकुन और अजय तो आपसी तनाव से मुक्ति पा लेते हैं, किंतु उन दोनों से बंटी जुड़ा हुआ है। उस समय वे दोनों ही इस बात को नहीं सोचते। शकुन के माता होने के कारण बंटी उसी के पास रहता है। शकुन के चाचा उसे पुनर्विवाह की सलाह देते हैं। शकुन चाचा की बात मानकर डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करती है। तो बंटी सौतेले पिता को स्वीकार नहीं कर पाता और वह पिता के पास चला जाता है। उसके पिता मीरा नाम की लड़की से विवाह करते हैं। पृष्ठ संख्या 42। बंटी वहां पर सौतेली माँ के कारण नहीं रहना चाहता, अतः वह अब कहाँ रहे। अंत में उसे हॉस्टल में जाना पड़ता है। इस प्रकार सारी रचना में अजय शकुन व बंटी होने के कारण पात्र त्रिगुणात्मक है। पैराग्राफ चीज। जोशी से विवाह के पश्चात शकुन स्वयं को अकेला महसूस करती है, किंतु आगे चलकर शकुन जोशी के समक्ष अपने अहम को त्याग कर समर्पित करती है और वह बंटी के लिए सोचती है। पैराग्राफ चीन। इस प्रकार इस उपन्यास की कथा वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। यहाँ चित्रित स्त्री पुरुष बच्चे की मनोभावनाओं को समझने में असमर्थ दिखाई देते हैं। यह एक यथार्थ है। पैराग्राफ चीन। महाभोज का यथार्थ राजनैतिक है। मनु जी ने राजनीति के सभी पहलुओं का चित्रण कुशलता पूर्वक किया है। डॉक्टर अनीता राजूरकर लिखती है इन्वर्टेड कमापन, महाभोज भ्रष्ट राजनीति का दर्पण है। इन्वर्टेड कमा क्लोज। संदर्भ डॉक्टर अनीता राजूरकर, कथाकार मनु भंडारी, पृष्ठ संख्या 111। महाभोज देश में कांग्रेस द्वारा लगाई गई आपातकालीन स्थिति के समय की रचना है। आपात स्थिति के पश्चात जनता ने जनता सरकार को सत्ता की बागडोर सौंपी। इस समय सभी नेता धराशायी हुए। जनता पार्टी के समय अपने पद को पाने के लिए मोल भाव होने लगा। दल बदलू नेता उभर कर सामने आए। इसी का वर्णन महाभोज के माध्यम से मनु जी ने किया है। सरोहा गांव में आगजनी होती है, किंतु न कोई पुलिस आती है और न ही कोई रिपोर्ट लिखता है। चुनाव के 1.5 महीने पहले हरिजन युवक बिशु की हत्या होती है। नेता लोग कुर्सी पाने के लिए गांव के लोगों को आश्वासन देते हैं। चुनाव में 2 पार्टियां हैं, एक सुकुल बाबू की, दूसरी दास साहब की। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से वोट पाने के लिए तिकड़ में चलती हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। हमेशा सतर्क सावधान, अपनों से परायों से सभी से सचेत। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ महाभोज मन्नू भंडारी, पृष्ठ संख्या 15। पैराग्राफ चेंज। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। महाभोज का यथार्थ राजनैतिक है। दुहाई गरीबों की सब देते हैं, पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता को बांट कर रखो, कभी जाति की दीवारें खींच कर तो कभी वर्ग की दीवारें खींच कर। जनता का बटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति के स्रोत है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ महाभोज मन्नू भंडारी, पृष्ठ संख्या 47। इस प्रकार राजनीतिक यथार्थ का महाभोज में नेताओं के चरित्रों को उजागर करके चित्रण किया गया है। महाभोज में DIG सिन्हा और SP सक्सेना पुलिस अधिकारियों द्वारा नेता काले को सफेद, सफेद को काला कर देते हैं। DIG सिन्हा बिशु की मौत को आत्महत्या घोषित कर बिंदा को गिरफ्तार करवाता है, जिससे सिन्हा को प्रमोशन मिल जाती है। प्रशासनिक सेवा का चित्रण यथार्थ है। पैराग्राफ चेंज। महाभोज में आर्थिक संतरास की पहचान भी गहरी है। हीरा की आर्थिक स्थिति, मजदूरों का शोषण, सरकारी रेट पर मजदूरी न मिलना महाभोज में चित्रित है। जमींदार किसानों का शोषण करते हैं, यह शोषण आर्थिक व सामाजिक होता है। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 43। आज का मनुष्य हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, वह चाहे भौतिक हो या वैज्ञानिक, किंतु उसमें स्वार्थपरता ही दिखाई देती है, अतः उसका दिल उतना ही छोटा होता है। महाभोज में स्वार्थपरता को भी चित्रित किया गया है। केवल नेता ही नहीं, पुलिस भी अपनी प्रमोशन की सोचती है। व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे सभी को भूल जाता है, चाहे देश हो या समाज। सुकुल बाबू द्वारा बिंदा की गिरफ्तारी व सिन्हा का प्रमोशन सत्ता और नौकरशाही के टकराहट का ही यथार्थ है। पैराग्राफ चीन। सामाजिक समस्याओं जैसे सामाजिक शोषण, विषमता, वर्ग कला भी इस उपन्यास में चित्रित है। मनु जी ने महाभोज की रचना सामाजिकता को राजनैतिक दृष्टिकोण देकर की है। वर्ग धर्म संप्रदाय अमीर गरीब के मन में चेतना का विकास किया गया है। सभी वर्ग अपना अधिकार मांगने के लिए सचेत रहते हैं। सरोहा गांव के मजदूर तथा गरीब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गृह उद्योग की स्थापना करते हैं। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वे अपनी बहुमूल्य चीजें भी गिरवी रखते हैं। पैराग्राफ चेन, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल पाना चाहता है। ऐसा न होने पर वह खुद को अकेला महसूस करता है। महाभोज में त्रिलोचन सिंह एक ऐसे ही व्यक्ति है। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार मन्नू भंडारी जी ने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का चित्रण यथार्थ रूप में किया है। गिरडकर के अनुसार इन्वर्टेड कमापन, मन्नू जी ने अपने उपन्यासों में जितनी भी समस्याओं का चित्रण किया है, उस चित्रण का मूल आधार वर्तमान जनजीवन में व्याप्त भ्रष्टता और विसंगति पर प्रहार करना रहा है। लेखिका समस्याओं की ओर केवल इंगित करके रुक नहीं जाती, अपितु उसकी सारी कुरूपताओं को प्रस्तुत कर परोक्ष रूप से उसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रहार भी करती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ डॉक्टर गिरडकर, मन्नू भंडारी का कथा साहित्य, पृष्ठ संख्या 116। पैराग्राफ चेंज। कृष्णा सोबती एक साहसी लेखिका है। वे यथार्थ को उसके वस्तुगत रूपों में पहचान कर विश्वसनीय तरीके से व्यक्त करती है। कृष्णा सोबती ने लगभग अपने सभी उपन्यासों में नवीन और अनछुए प्रसंगों को रचनात्मक स्तर पर गहरी संवेदना के साथ नारी मन के उस पर्त को उभारने का प्रयास किया है। डार से बुछड़ी उपन्यास में नारी को पुराने संस्कारों में जकड़ी हुई दिखाया गया है। पासो अपनी माँ के कारण पुरुषों के जाल में फंसती है। उसे एक के पश्चात एक का शिकार होना पड़ता है। इस कारण वह स्वयं को अभागिन समझती है। वह अपनी माँ को भी छोड़ती है, किंतु फिर भी अपना पैर न टिका सकने के कारण डार पर आ जाती है। इस प्रकार पासो परंपराओं से जकड़ी हुई चित्रित होती है। इसमें पासो के दुख की गाथा का यथार्थ चित्रण हुआ है। पैराग्राफ चेंज। हिंदी उपन्यास साहित्य में नैतिकता, अनैतिकता के दायरे से मुक्त होकर पुरुषोचित तेवर को अपनाते हुए लेखन के क्षेत्र में जिन लेखिकाओं ने साहस का परिचय दिया है, उनमें कृष्णा सोबती का प्रमुख स्थान है। पृष्ठ संख्या 44। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से नारी के विविध रूपों का यथार्थ चित्रण किया है। प्रेम और नैतिकता परस्पर विरोधी धारणाएं हैं। इनके नारी पात्र प्रेम के लिए किसी नैतिकता का निर्वाह आवश्यक नहीं मानते। मित्रों मरजानी की सुमित्रा दैहिक आवश्यकता के वसीभूत होकर सभी प्रकार के नैतिक मानदंडों का उपहास करती हुई चित्रित की गई है। संबंधों के धरातल पर कृष्णा सोबती के पात्र किसी नैतिकता का निर्वाह नहीं करते। बात बात पर व्यंग्य करती मित्रों सरदारी के असमर्थ्य के प्रति घुटने टेक कर पत्नी व्रत को सुरक्षित नहीं रखती। उसका शारीरिक स्वार्थ उसे खंडित करता है और वह बड़ी निर्भीकता से अपनी उच्च श्रृंखलता को भी स्वीकारती है। यह लेखिका किसी नैतिक आग्रह के लिए नायिका के चित्रण में कोई मोड़ नहीं लाती। वैवाहिक बंधन में बंधी नारी के लिए आवश्यक है कि वह अपने दायरे के अंदर ही रहे। इस प्रकार मित्रों अपनी कुंठा को घूट घूट कर जीती है। यह मित्रों की त्रासदी का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह वास्तविक घटना है। मित्रों प्रेम की बात को सोचती है, वह अपने को बिखरने नहीं देती। शारीरिक सेक्स का इतना खुला व यथार्थ चित्रण करने का कृष्णा सोबती जैसी नारी का ही साहस हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। सूरजमुखी अंधेरे में सेक्स का खुला चित्रण है। रत्ती उसकी नायिका है। वह असत से प्यार करती है, उससे विवाह भी करना चाहती है, किंतु उसकी मृत्यु के कारण विवाह नहीं कर पाती। स्कूल के सभी लड़के लड़कियां उसे चिढ़ाते हैं और उससे दूर भी रहते हैं। स्त्री माँ नहीं बन पाएगी, यह अभिशाप उसके साथ जुड़ जाता है। रति के जीवन में अनेक पुरुष आते हैं, किंतु सभी लौट जाते हैं। कोई उसे कहता भी है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तुम घने हुए अंधेरे की वह परत हो जो कभी उजागर नहीं होती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती, पृष्ठ संख्या 97। इस बात से प्रकट होता है कि इसके मूल में पुरुषों की केवल भोग परक दृष्टि ही है। काम संबंधों की ईमानदार स्वीकृति तथा विवाहेतर यौन संबंध की स्थापना के बावजूद कृष्णा सोबती वैवाहिक दृष्टिकोण के प्रति निष्ठावान दिखाई देती है। अंत में दिवाकर आकर उसकी सारी कुंठाओं को दूर करता है। पैराग्राफ चेन। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें साह और साहनी का चित्रण किया गया है। शाह भाइयों में सबसे बड़ा है, शिक्षित, विद्वान और दानी भी है। बड़ी बहन साहनी परिश्रमी कुशल नारी है। छोटे साहब बड़े भाई के मार्गों का अनुसरण करते हैं और छोटी साहनी अक्खड़ प्रवृत्ति की है। इनके दो बच्चे हैं और इनके पति वैरागी हो जाते हैं। इनके नारी चरित्र की कसक पूरी नहीं होती। इस उपन्यास में पूजा परंपरा, अंधविश्वास, कोर्ट कचहरी, चोरी डकैती सभी का यथास्थान चित्रण है। इकहरे चरित्रों को न लेकर गांव, कस्बे, शहर सभी का चित्रण है। साह जमीनों के मालिक व सारे गांव की मदद करते हैं। इस प्रकार डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा जैसे अनेक उपन्यासों में जीवन की अलग अलग वास्तविकताओं का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। पैराग्राफ चीन। बेघर उपन्यास की संजीवनी आधुनिक युग की उन नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो विवाह से पूर्व संबंधों को अनुचित नहीं मानती। परमजीत के आकर्षण, व्यक्तित्व एवं उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार कर वह पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। पृष्ठ संख्या 45। आज भी शारीरिक संयम और सामाजिक मर्यादाओं को तिलांजलि देने वाली नारी को जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संजीवनी भी इसकी शिकार होती है। इसके मूल में कुंवारेपन को लेकर परमजीत की पूर्व मान्यताएं हैं। वह विवाह के लिए यौन पवित्रता को आवश्यक मानता है। संजीवनी से मिलने के पश्चात परमजीत को उसके कुंवारेपन के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है, जो आगे चलकर संबंध विच्छेद में परिणत हो जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रेम और विवाह को लेकर नारी की मानसिकता का है। परमजीत एक रमा नाम की लड़की से विवाह करता है, किंतु उसका खालीपन फिर भी बढ़ता ही चला जाता है। वह पिता और पति बनकर भी कुछ नहीं रह जाता। संजीवनी प्रेम संबंधों में स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। इस प्रकार उसमें सेक्स के रूढ़िगत दृष्टिकोण का यथार्थ अंकन है। पैराग्राफ चेंज। नरक दर नरक उपन्यास में गृहस्थी की समस्याओं का यथार्थ चित्रण है। मध्यवर्गीय उषा जगन विवाह तो करते हैं, किंतु नौकरी के न होने के कारण जगन भटकता रहता है। वह बंबई से चंडीगढ़ व इलाहाबाद पहुंच जाता है। इसमें ममता कालिया प्रदर्शित करना चाहती है कि बाहरी परिवेश स्त्री पुरुष के संबंधों में किस प्रकार से दरार डालते हैं। सीता विनय भी एक युगल है, जिनमें पत्नी तो घर के कार्यों में व्यस्त है और पति राजनीति में। पति को सामाजिक विधान की चिंता तो है, किंतु घर के विधान की नहीं। इस कारण इनके संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। पैराग्राफ जी। प्रेम कहानी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह को चित्रित करने का प्रयास है। जया गणेश प्रेम विवाह करते हैं। परिवार में विद्रोह करके विवाह तो करते हैं, किंतु गणेश की व्यस्तता उनको खिन्न कर देती है। आगे चलकर सब ठीक हो जाता है। यशा परिवार का विद्रोह न कर सकने के कारण अपने प्रेमी को छोड़ देती है और उसका विवाह दूसरे पुरुष से हो जाता है, जिसके कारण वह तनाव ग्रसित रहती है। ममता कालिया अंतरजातीय विवाह को नहीं मानती, वे मन के मिलन को ही सब कुछ मानती है। ये प्रेम कहानी के माध्यम से नारी के स्वातंत्र अस्तित्व को महत्व देती है। ममता कालिया ही एक ऐसी लेखिका है जिनमें बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी जैसे उपन्यासों में भी यथार्थ को उसके सही तर्कों के साथ चित्रित करने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। मध्यवर्गीय व निम्न मध्यवर्गीय मानसिकता तथा कार्य व्यापार का सूक्ष्म अंकन ममता कालिया में ही दिखाई देता है। पैराग्राफ चेंज। शिवानी के लिए प्रणय और विवाह जीवन की मुख्य समस्या है। वे इसे एक चित्रकार की भांति सुंदर रंगों में रचती हैं और अनुभूति की सुंदरता तथा कथ्य की रोचकता का ख्याल करती हैं। उनके उपन्यास में ज्यादातर निम्न वर्गों के सामाजिक जीवन में प्रेम विवाह या संतान की समस्याएं केंद्र में रखी गई हैं। पैराग्राफ चीन। मायापुरी उपन्यास में निम्न वर्गीय परिवार की कथा है। इसकी नायिका शोभा है, जो पढ़ने के लिए शहर जाती है और मकान मालिक का पुत्र अनुराग उस पर आसक्त हो जाता है। उसके प्रेमी सतीश का विवाह राज्यपाल की पुत्री से हो जाता है। वह भटकती रहती है। नैनीताल में उसके प्रेमी से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ वे आखिरी विदाई लेते हैं। विदेश जाते समय वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह घायल हो जाता है। पृष्ठ संख्या 46। इस उपन्यास में पूंजीवादी और सामंतवादी लोगों की जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण चित्रित किया गया है। उपन्यास को पढ़ने पर प्रतीत होता है कि यह घटना हमारे समक्ष हो रही है। पैराग्राफ चेंज। विवाह की समस्या के आधार पर 14 फेरे की रचना की गई है। इस उपन्यास में संस्कारों व परिवर्तित मूल्यों को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इसकी मूल संवेदना ग्रामीण संस्कृति और नागरीय संस्कृति के अंतर को उजागर करना है। 14 फेरे की कथा वस्तु संवेदनाओं भावनाओं को उजागर करने में अत्यंत सफल रही है। पैराग्राफ 3, कृष्ण कली में वैश्यावृत्ति को दर्शाया गया है। यह मध्य वर्गीय समाज की जीवन कथा है। कुष्ठ रोगी की संतान कृष्ण कली है। उसे पैट्रिक पालती है, पढ़ने के लिए बोर्डिंग में डाल देती है। कोढ़ी माता पिता का पता चलने पर वह कुंठित हो जाती है। वह प्रवीण नायक युवक से प्रेम करती है, उसका विवाह अन्यत्र हो जाने पर आत्महत्या कर लेती है। इस उपन्यास की कथा मानवीय संवेदना से युक्त है। इसकी कथा में गतिमयता व रोचकता पाई जाती है। इसकी कथा किसी विशेष समस्या से न जुड़ी होकर बल्कि यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मान्यताओं का विरोध करती हुई सारे मानवता की कथा मानी जा सकती है। पैराग्राफ 3, कृष्ण कली में जीवन के नए दबाव व चेतना का यथार्थ चित्रण किया गया है। पैराग्राफ 3, भैरवी की नायिका चंदन पहाड़ों पर वर की तलाश में जाती है। वहां पर्वतारोही विक्रम से उसकी शादी तय हो जाती है। हनीमून के दौरान यात्रा करते समय एक यातायाती दल आकर उसके पति को बांधकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। वह ट्रेन से भागकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है, किंतु उसे एक अघोर व्यक्ति द्वारा बचा लिया जाता है। वह उस पर गलत नजर रखता है। वहां से भागकर वह अपने पति के पास आती है, किंतु वहां वह देखती है कि उसकी शादी दर्शन से हो गई है, उसका पुत्र भी है। वहां से वह निकलकर भटकती रहती है। यह सारी घटना भाग्यवश होती है, किंतु वास्तविक होने के कारण उसे यथार्थवादी रचना कहा जा सकता है। पैराग्राफ 4, शमशान चंपा में एक युवती है जिसे शालीनता निष्ठा व जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपनी परंपराओं के कारण दुख झेलना पड़ता है। वह एकांत की तलाश में भागती रहती है, किंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। अंत में उसे केनाराम की अधम दासी भी बना दिया जाता है। यह उपन्यास प्रतीकात्मक है। इसमें विचित्र व अद्भुत घटनाओं का समावेश है। पैराग्राफ 3, सुरंगमा एक नाबालिग नारी की कहानी है। वह गजानन से प्रेम करती है और उसके साथ भाग जाती है, किंतु उसे वह धोखा दे देता है। वहां उसे रॉबर्ट मिलता है। उससे लक्ष्मी को उसकी बहन शादी करवा देती है, क्योंकि उसके होने वाली संतान को बाप का नाम मिल जाएगा और यही जन्मी बच्ची सुरंगमा है। सुरंगमा अपनी माँ लक्ष्मी के बीमार होने व उसके पिता के वापस आकर सारे पैसे चुकाने के कारण उसे ट्यूशन करनी पड़ती है। इस कारण वह विवाह व प्रेम में आस्था नहीं रखती, किंतु न चाहते हुए भी वह दिनकर को चाहने लगती है। वह उसे छोड़कर चला जाता है और वह फिर अकेली ही रह जाती है। दिनकर के चरित्र को शिवानी जी ने बड़ी कुशलता से खोला है। पृष्ठ संख्या 47, इस उपन्यास में पात्रों का, समाज का, राजनीति का यथार्थ चित्रण चित्रित है तथा समाज की कुप्रथा की आलोचना भी की गई है। पैराग्राफ 4, रति विलाप एक वास्तविक कथा की रचना है। अनुसुईया मंदिर में बैठकर अपनी कहानी सुनाती है। उसका विवाह एक पागल कापड़िया से होता है। वह उसे लेकर छत से कूदता है। वह तो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, किंतु अनुसुईया नहीं मरती। वह अपने ससुर के साथ रहती है। उसकी मुलाकात हीरा नाम की हत्यारिन से होती है, जो कि उसके ससुर को भगा ले जाती है और अंत में इस प्रकार से मिलती है कि वह उसे कुछ भी नहीं कह पाती। यह नारी जीवन के उतार चढ़ाव का मार्मिक यथार्थ चित्रण है। इसे शिवानी जी ने अत्यंत विवेक के साथ कलात्मक व नाटकीय ढंग से रचा है। पैराग्राफ 4, माणिक में प्रेम की समस्याओं को उजागर किया गया है। इसमें नीलम शहर से दूर अपनी लक्ष्मी के साथ वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए जाती है, किंतु वहां उसे दीना से प्यार हो जाता है। वह उसे खुद को इस प्रकार से समर्पित कर देती है जैसे कि वह विवाहिता हो। वह उसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करती। वह एक स्वार्थी और कातिल पुरुष है जो उसे लूट कर चला जाता है। यहाँ शिवानी जी ने प्रेम के स्वरूप को उजागर करने की कोशिश की है। यौन कुंठा से ग्रसित नारी की व्यंजना की है। एक ठग द्वारा ठगी गई युवती का रोमांचक व रोचक चित्रण किया है। पैराग्राफ 4, रथ्या की बसंती विमलानंद को चाहती है। वह अनाथ बालिका है। उसका विवाह विमलानंद जी से नहीं होता। बसंती विवश होकर सर्कस वालों के साथ भाग जाती है। वहां सर्कस के मैनेजर उस पर गलत नजर रखते हैं। वहां से भागकर वह विदेशी महिला के यहाँ शरण लेती है। वह उसे नृत्य कला में प्रवीण कर देती है। वहां से स्वतंत्र व्यक्तित्व जीने के लिए भाग जाती है और वह पैसे व शान शौकत को हासिल कर लेती है। एक दिन विमल आता है। उसकी चकाचौंध देखकर उसका रहस्य जानना चाहता है और उसे इस सड़क पर रथ्या कहता है। इस उपन्यास द्वारा स्त्री पुरुष के रहस्यों को उजागर करना है। बासंती के चरित्र में परिवर्तन से यह उपन्यास सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें पात्र आदर्शवादी विमल और यथार्थोन्मुखी बासंती है। पैराग्राफ चेंज। गैंडा उपन्यास दो सहेलियों राज व सुपर्णा की कहानी है। यह एक छोटा उपन्यास है। इसमें राज के पति मेहरा है और सुपर्णा के पति रोहित है। राज के पति के विदेश चले जाने पर वह अपनी सहेली सुपर्णा के यहाँ जाती है। वहाँ वह उसके पति व बच्चों को अपना बना लेती है। यह सुपर्णा से नहीं सहा जाता, जिसका विरोध करने पर उसे अपने पति को भी खोना पड़ता है। शिवानी की दृष्टि पारस्परिक ईर्ष्या, छल, यौन शिथिलता, अनैतिक संबंध, रूपाकर्षण पर अधिक गई है। इसमें यह दर्शाया गया है कि नारी कभी भी अपनी सौत को नहीं देख सकती। इस प्रकार दो सहेलियों के प्रेम को यथार्थ रूप में उजागर किया गया है। पैराग्राफ चीन। किंशु नली का ढाट में अवैध बच्चे की समस्या को ही मूल में रखा गया है। इसमें एक पगली है, एक पंडिताइन है और एक पंडित। उनकी कोई संतान न होने के कारण वह कृष्णा को अपने घर में रखती है। पंडित जी उसे हर वक्त डांटते रहते हैं। पृष्ठ संख्या 48। इस कारण वह घर छोड़कर चली भी जाती है, लेकिन एक बार वह भागती है तो अपना मुंह काला करके लौटती है। वह माँ बनने वाली होती है तो पंडित घर छोड़कर चले जाते हैं और वहां से पत्र द्वारा सूचित करते हैं कि उसका बाप वह है। इस प्रकार उस बच्चे के अवैध होने की समस्या को दूर करती है। पैराग्राफ चेंज। इसकी कथा विचित्र है। शिवानी के उपन्यासों के अच्छे चरित्र आदर्शवादी हैं और दुर्बल चरित्रों को यथार्थवादी बनाया है। रथ्या के विमलानंद आदर्शवादी हैं और कृष्णकली की कली चारित्रिक दृष्टि से दुर्बल। कृष्णकली और रथ्या में बसंती का चरित्र यथार्थ व सजीव होकर सामने आता है। शिक्षित नारी विशेषतः स्वतंत्रता के पश्चात चार दीवारों से निकलकर सामने आती है और इस कारण वह बाहर के माहौल से अनभिज्ञ भी है। इसी कारण वह खुद को बाहरी माहौल में फिट नहीं कर पाती। नारी जीवन के साथ साथ ये अवैध संतान को भी लेती है। इनके उपन्यासों में चाहे कोई भी समस्या हो वह यथार्थ रूप में प्रस्फुटित होती है। पैराग्राफ चेंज। मृदुला गर्ग ने उच्च वर्गीय जीवन को केंद्र में रखकर उसकी प्रबुद्ध स्त्रियों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और स्वप्नों को चुना है। व्यक्तिवादी सोच की अपनी सीमाएं होती हैं। परंपरागत अंधविश्वासों, प्रेम व विवाह को लेकर अपनी निजी मान्यताएं होती हैं। वे समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं उसके हिस्से की धूप में एक शिक्षित स्वतंत्रता की समर्थक नारी को केंद्र में रखा गया है। मनीषा के पति जितेन दोनों वैवाहिक हैं, किंतु व्यस्तता के कारण मनीषा अकेलापन महसूस करती है और मधुकर के प्रति आकर्षित हो जाती है। इसमें प्रेम के स्वरूप को त्रिकोणात्मक दर्शाया गया है। जितेन उदात्त चरित्र का पुरुष है। वह जानते हुए भी मनीषा को कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे मधुकर से मिलने की स्वतंत्रता दे देता है। अंत में वह जितेन के पास वापस आ जाती है। लेखिका ने मनीषा के माध्यम से प्रेम विवाह पर विचार करने के साथ ही पुरुष के माध्यम से जीवन की पूर्णता, अर्थवत्ता तलाशने की नारी की मानसिकता को वर्णित किया है। मनीषा का परंपरागत विवाह पद्धति में विश्वास नहीं है। इस विवाह पर वह व्यंग्य करते हुए कहती भी है, इन्वर्टेड कमापन, इसमें क्या है, माँ बाप पंडित पुरोहित से मिलजुल कर मंगल नक्षत्रों के तले अग्नि को साक्षी दे दो इंसानों के दुपट्टे बांध दिए और वह चल दिए एक सैया पर जीवन पर्यंत प्रेम का नाटक करने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ उसके हिस्से की धूप, मृदुला गर्ग, पृष्ठ संख्या 88। प्रेम का स्वरूप समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, चाहे वह लैला मजनू का हो या सीरी फरहाद का। मृदुला गर्ग के प्रेम से संबंधित विचार परंपराओं को मान्यता नहीं देते। वह प्रेम को स्थायी नहीं मानती। इसी तरह का प्रेम उन्होंने उसके हिस्से की धूप में मनीषा व मधुकर द्वारा उजागर किया है। ये स्वतंत्रता की पक्षधर रही है। अपने विचारों के आधार पर सही पात्रों का चुनाव कर यथार्थ चित्रण करने में सफल रही है। मनीषा को वह आधुनिक स्वतंत्र नारी के रूप में लेती है, जो कि इसके व्यक्तित्व को तोड़ देता है। तलाक के प्रश्न पर वह कहती है कि इन्वर्टेड कमापन, किसी भी स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण का मतलब यह नहीं होता कि वह विवाह करे ही करे। आकर्षण ऐसी चीज है जो वक्त के साथ टिकती नहीं। तुम जानती हो मैं उतने तंग ख्यालों का आदमी नहीं हूँ। मधुकर और तुम्हारे बीच कुछ भी गुजरा हो तो उसे भुलाया जा सकता है, इसमें तलाक की जरूरत नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग पृष्ठ संख्या 124। पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 49। वंशज की कथा नौकरशाही वर्ग की कथा है। शुक्ला जज साहब अंग्रेजी पद्धति के बुजुर्ग हैं। उनका खान पान रहन सहन आचार विचार अंग्रेजियत से भरा है, किंतु उनका पुत्र उनके विचारों से एकदम अलग है। वह स्वतंत्रता का पुजारी है, देशभक्त है, गांधी जी की विचारधारा को मानता है, किंतु उसकी पत्नी अपने ससुर के विचारधारा को अधिक महत्व देती है। वे उन्हीं की बात को मानती है, यहाँ तक कि उसके घर छोड़कर जाने पर भी वह उसके साथ नहीं जाती, अपने ससुर के पास ही रह जाती है। पैराग्राफ चेन अतः वंशज अंग्रेजी शासन काल के प्रभावों से ओतप्रोत है। उस समय का वातावरण इस उपन्यास में स्पष्ट दिखाई देता है। पैराग्राफ चेंज चितकोबरा आधुनिक रचना दृष्टि से नारी की परिवर्तित दृष्टि का चित्रण है। युग युग से नारी की भावनाओं को विवाह के पवित्र बंधन के नाम पर शोषित किया जाता रहा है। उसे धर्म और नैतिकता से जोड़कर आजन्म निर्वाह पर बल दिया जाता रहा है। मृदुला गर्ग समाज की इस धारणा को महज छलावा और आडंबर मानती है, इसीलिए वैवाहिक संस्था के प्रति आक्रोश तथा उसकी निरर्थकता का सवाल इस उपन्यास में भी उठाया गया है। मनु के पूछने पर महेश स्पष्ट शब्दों में कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, विवाह के बंधन में मेरा विश्वास नहीं है मनु। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ चितकोबरा मृदुला गर्ग पृष्ठ संख्या 102। प्रेम का संबंध भावना से होता है, लेकिन उसी से जुड़ा पक्ष काम का है। वो स्वयं सामाजिक भय से इस जैविक सच्चाई को झूठ मानती है। चितकोबरा में एक स्थान पर लिखती भी है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जो लोग समाज या मान मर्यादा के डर से शरीर को जबरदस्ती मारते हैं, उसकी सहज मृत्यु या मोक्ष से कतराते हैं, वे सदा के लिए प्रेम को शारीरिक बनाए रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ चितकोबरा मृदुला गर्ग भूमिका से, जो सामाजिक बंधनों का नैतिक मूल्यों के भय से प्रेम की शारीरिकता से दूर रहता है, वह वास्तविक अर्थ में डरा हुआ कहा जा सकता है। इसे हम पाखंड का नाम दे सकते हैं। इसके उपन्यासों में व्यक्तिक स्वच्छंदता को अधिक महत्व दिया गया है, इसी कारण सामाजिक मूल्यों के प्रति असंतोष भी अधिक दिखाई देता है। इस उपन्यास में मनु प्रेम विवाह और समर्पण पर अपना अधिकार मानती है। इसमें वह अपने पति का हस्तक्षेप भी नहीं स्वीकार करती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नहीं, मुझे मेरा नाम चाहिए। उसका अस्तित्व भले ही कुछ न हो, फिर भी मुझे चाहिए। मुझे मुक्ति चाहिए, समर्पण का अधिकार मुझे चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ चितकोबरा मृदुला गर्ग पृष्ठ संख्या 75। पैराग्राफ चेंज मृदुला गर्ग के उपन्यासों में आधुनिकता अधिक झलकती है, लेकिन नारी के प्रेम विवाह और काम की स्वतंत्रता को प्राप्त करके भी मानसिक अंतर्द्वंद से घिरी दिखती है। नारी मुक्ति और अपनी अस्मिता को स्थापित करने के प्रयास में वह किसी सार्थक दिशा की खोज में भटकती रहती है। इसीलिए प्रेम पात्र को शरीर प्राप्त कर लेने पर भी मानसिक अतृप्ति बनी रहती है। पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 50। इस प्रकार मृदुला गर्ग ने उच्च वर्गीय जीवन को केंद्र में रखकर उसकी प्रबुद्ध स्त्रियों की अपनी आकांक्षाओं को उनके स्वप्नों को चुना है। पैराग्राफ चेंज निरुपमा सेवती की पैनी दृष्टि से समाज की विषम व जटिल परिस्थितियां भी नहीं बच सकी हैं। उन्होंने पूंजीवादी समाज जो कि मानवीय संबंधों को विशेष रूप से विकृति प्रदान करता है, उसको अपने उपन्यास की कथा वस्तु के रूप में लिया है। पतझड़ की आवाजी उपन्यास में नारी की मूल समस्याओं को लिया गया है। इसकी नारियां सुशीला अनुभा उषा है। पैराग्राफ चीन अनुभा नौकरी करती है। वह जिस मकान में रहती है उसकी पहली मंजिल पर धंधा होने के कारण उसको सभी लोग नीची दृष्टि से देखते हैं। उसका प्रेमी रमेशन भी इसी बात के कारण उसे बात बात में ताने देता है और उसे छोड़ देता है, उससे विवाह नहीं करता। इस कारण वह कुंठित होती है। वह निम्न परिवार की होने के कारण उसके खिलाफ आवाज उठाने में भी असमर्थ रहती है। प्रमोशन के लिए वह अपने अफसर को खुश करने के लिए होटलों में जाती है, किंतु फिर भी प्रमोशन नहीं मिलता। यह प्रमोशन उषा नाम की एक लड़की को मिलता है। इस प्रकार परिस्थितियों से जूझती रहती है। पैराग्राफ चेंज। सुशीला अनुभा की सहेली है, जो अत्यंत संपन्न परिवार की है। वह स्वावलंबी होना चाहती है, किंतु उसके भैया उसे नौकरी नहीं करने देते, उसका विवाह करवा देते हैं, किंतु वहां भी यह सफल नहीं होती और तलाक ले लेती है। इन सभी तनावों से मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या कर लेती है। अनुभा विवाह भी करना चाहती है और ठोकर खाने के कारण उससे कतराती भी है। निरुपमा सेवती प्रेम को मन व शरीर से पूर्ण बनाने की दृष्टि से उजागर करती है। उषा अनुभा व सुशीला से स्वतंत्र अधिक है। वह प्रेम और विवाह को अत्यधिक स्वतंत्र दृष्टि से देखती है। वह उसमें स्वार्थ की भावना भी रखती है और पुरुष को साधन के रूप में इस्तेमाल करती है। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास को पढ़ने से प्रतीत होता है कि ये सभी वास्तविक घटनाएं हैं। वे मूल में किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान है, जिस कारण इसको यथार्थवादी उपन्यास की दृष्टि से देख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। मेरा नरक अपना है उपन्यास में परिवार के टूटने की समस्या है और प्रवृत्ति को नरक रूप में भी देखा गया है। इसमें प्रेम के त्रिकोण रूप को लिया गया है। शीला का विवाह हीरेन कपूर से होता है। उसका प्रेमी सुजीत है। वह जानता भी है कि पत्नी अपने पति को परंपरागत मूल्यों के आधार पर त्यागने में असमर्थ होगी, किंतु फिर भी वह उससे प्रेम करता है। यह प्रेम को नया रूप दिया गया है। सुशीला के लिए समस्या पैदा होती है कि वह पति को छोड़े या प्रेमी को, किंतु वह समाज को ध्यान में रखते हुए पति को ही स्वीकार करती है और स्वतंत्रता के पक्षधर होने के कारण प्रेमी से भी संबंध बनाए रखती है। यह प्रेम के आदर्श को न लेकर प्रेमी से मिलना यथार्थता को उजागर करता है। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 51। बटता हुआ आदमी उपन्यास में आधुनिक जीवन के संक्रांत यथार्थ के विश्वसनीय चित्र मिलते हैं। इसमें परिवार के बिखरने के कारण समाज में प्रेम के रिश्तों में बिखराव या तनाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाता है। शरद और मंजू दोनों पति पत्नी हैं। इनकी एक बच्ची भी है, किंतु निम्न वर्ग के होने के कारण अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बाहर की दुनिया उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वह मंजू को छोड़कर बाहर जाता है। वहां उसे अनीता व सुनंदा मिलती है। अनीता का प्रेमी निर्धन होने के कारण उससे गलत कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, किंतु वह ऐसा करने के लिए इनकार करती है, जिससे कि उसका संबंध टूट जाता है। सुनंदा की मजबूरियां उसे अपनी देह बेचने पर मजबूर कर देती हैं। शरद दुनिया के चकाचौंध से तो आकर्षित होता है, किंतु वह अनीता की ओर भी खिंचाव महसूस करता है। इस प्रकार शरद पत्नी व प्रेमिका के बीच फंस जाता है। इसमें आर्थिक कारण सारी विडंबनाओं को जन्म देते हैं। धन की इच्छा करना यहाँ विलासिता की द्योतक है। शरद न तो प्रेमिका का न पत्नी का रह जाता है। इस प्रकार इस उपन्यास में निम्न पूंजीवादी वर्गों का यथार्थ रेखांकन मिलता है। पैराग्राफ चेंज। दहकन के पार उपन्यास संभ्रांत जीवन की समस्याओं का चित्रण है। तुषार मुस्लिम वर्ग के युवक असलम के साथ प्रेम करती है, किंतु धर्म जाति के विभिन्नता के कारण विवाह नहीं कर पाती। वह अपने गर्भस्थ शिशु को लेकर नवीन समाज की रचना को समस्त धार्मिक नैतिक मान्यताओं को चुनौती देती है। वह ऐसे समाज को जन्म देना चाहती है जहां मनुष्यता जन्म पा सके, वहां धर्म जाति का महत्व न हो। निरुपमा सेवती ने स्वीकारा है तुषार अपने बच्चे को जिस नए समन्वय जिस नई समझ से देखती है, वह नारी मन के अंतर गर्भ से जन्मी नई चेतना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ निरुपमा सेवती दहकन के पार पृष्ठ संख्या 10। तुषार मनुष्य को मनुष्य बनकर जीने को महत्व देती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। तुम बाहरी धर्म जाति से रहित होगे ना, तो ऐसी जगह कहाँ पाऊँ जहाँ मनुष्य जन्म पाए तो उसका धर्म न पूछा जाए, माता पिता का नाम न पूछा जाए। उसका मनुष्य होना ही काफी है, उसकी मनुष्यता को इतना सम्मान तो मिले कम से कम। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए भी यही सोचती हूँ, तुझे ऐसी जगह जन्म दे सकूँ जहाँ हर तरह की मानसिकता के लिए सुविधा हो। मैं जान गई हूँ कि कथ्यों की तरह मैं भी स्वयं नैतिकता की आंतरिक शुद्धता को पा गई हूँ। मुझे अपने को नियंत्रित रखने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ निरुपमा सेवती, दहकन के पार, पृष्ठ संख्या 13। आज तक संतान की वैधता को माता पिता का ऋणी माना जाता है, जो कि वैवाहिक संस्कारों, सामाजिक व धार्मिक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। इनको मानकर चलने वाला इस मुहर का हकदार होता है और उत्पन्न शिशु परंपरागत रूप में जाति धर्म आदि का पालन करने को विवश होता है। आज के युग की चिंता पति पत्नी के सामाजिक वैधता का स्थान मन मेल माने जाने के कारण श्रृंखला की कड़ी टूटने लगी है। परंपरा एक निश्चित मूल्य पर खड़े किए गए प्रश्न के कारण संस्कार के भीत को गिराने का जिम्मेदार है। कोई भी विचारधारा पुराने मूल्यों को पूरी तरह छोड़कर नहीं चल सकती। नई नैतिकता के रूप में आडंबरहीन मानवता का सृजन होता है। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 52। असलम का दोस्त इकबाल तुसार के अजन्मे बच्चे के लिए सारी परिस्थितियों से संघर्ष करने में मदद करता है। वह उस बच्चे को असलम को सौंपना चाहता है, किंतु असलम की मृत्यु के पश्चात वह तुसार से विवाह कर उसे बाप का नाम दे देता है। इसमें संवेदना को महत्व दिया गया है, जो मौजूदा समाज के आंतरिक विघटन और व्यक्ति के संघर्ष की यथार्थ अभिव्यक्ति है। पैराग्राफ चेंज। मेहरुन्निसा परवेज अपने उपन्यासों में सामाजिक जीवन के विविध आयामों को चुनौती देती है। मध्यवर्गीय जीवन के त्रास को यथार्थ रूप में चित्रण करना उसके बाएं हाथ का खेल है। यह कहा जाए कि उपन्यास में काल्पनिक वर्णन न करके मानव जीवन की जीवंत कथाओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। आंखों की दहलीजे में सेक्स को उजागर करने की कोशिश की है, पर पुरुष को पूर्ण रूपेण अर्पण करने वाली तालिका अपराध बोध ग्रस्त होती है। इसकी जिम्मेदार अपनी माँ को मानती है। पैराग्राफ चेंज। रेहाना व जावेद और तालिका व समीम विवाहित है। जावेद अपनी पत्नी के न रहने पर तालिका के यहाँ जाता है और उनमें प्रेम भावना जागृत होती है। इसका दोष तालिका परंपराओं से जकड़ी होने के कारण स्वयं को देती है और उसके मन में कुंठा उत्पन्न होती है। जावेद स्वयं को दोषी ठहराता है। इस प्रकार विवाहित संबंधों में जटिलता उत्पन्न होती है। पैराग्राफ चेंज। जमशेद व जमीला प्रेम तो करते हैं, किंतु परिवार की अनुमति न मिलने के कारण विवाह नहीं करते। इसमें निम्न वर्ग की जीवन की पीड़ा को उजागर किया गया है। शशि के प्रेम में आर्थिक विपन्नता के कारण रुकावट होती है। अंत में उपन्यास नाटकीय प्रतीत होता है। तालिका के कुंठित होने के कारण आत्महत्या का प्रयास व फिर घर छोड़कर भाग जाना, इसमें नारी के पलायन, प्रेम के स्वरूप, आर्थिक विपन्नता आदि का यथार्थ चित्रण है। पैराग्राफ चेंज। उसका घर उपन्यास में समाज में संयुक्त परिवार की समस्या को उजागर किया गया है। इसमें विवाहिता व परित्यक्तता नारी अन्य पुरुषों से संबंध स्थापित करके परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देती है। एल्मा संपन्न संयुक्त परिवार की नारी है। उसका भाई आर्थिक मोह के कारण उसे बेचना चाहता है, किंतु सफल नहीं हो पाता। उसके विवाहित जीवन में टकराव होने से तलाक हो जाता है। उसका भाई अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आहूजा को सौंप देता है। कमजोर प्रवृत्ति की होने के कारण सभी लोग उसका शोषण करते हैं। रेशमा एक साहसी, निर्भीक, परंपरागत रूढ़ियों को न मानने वाली विद्रोहिणी है। वह देव से प्रेम करती है और उसके बच्चे की माँ बनने का साहस भी करती है। इस उपन्यास में लेखिका ने अपने स्त्री पात्रों को पलायनवादी की अपेक्षा जीवन से विरोध करने वाली स्त्री चरित्रों को उजागर करने की कोशिश की है। रेशमा में आदर्शों का तोड़ फोड़ है। सोफिया स्वच्छंद धारणा की नारी है, जो एल्मा को भटकने नहीं देती। वह प्रेम को स्वतंत्र दृष्टि से देखता है। वह जान के साथ प्रेम करती है, उसी को अपने पति के रूप में स्वीकार भी करती है। नारी शोषण को लेखिका ने यथार्थ रूप देकर उजागर किया है। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 53। कोरजा उपन्यास मुस्लिम जीवन का यथार्थ चित्रण है। सेक्स एक मानवीय प्रक्रिया होने के कारण उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोरजा में सेक्स संबंधों को इतनी खुली छूट दी गई है कि एक ओर तो ये स्थापित होते हैं, दूसरी ओर टूट जाते हैं। इस कारण रचना की विश्वसनीयता भ्रमित होती है। इसमें बाप बेटी, माँ बेटी एक ही व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं। सेक्स की दृष्टि से यह उपन्यास विशेष ताजगी लिए हुए है। भारतीय समाज में रिश्तों की अवहेलना करना संभव नहीं। मुस्लिम समाज की संस्कृति में स्त्री पुरुष के संबंध स्वतंत्र हैं। ये एक ओर तो तलाक द्वारा टूटते हैं, दूसरी ओर निकाह द्वारा जुड़ जाते हैं। गरीबी ही संबंधों की नींव को इस उपन्यास में हिला देती है। नसीमा की पुरानी यादें इस उपन्यास की शुरुआत है, जो सन्नो की शादी में आती है। नसीमा की पुरानी यादों में अरमान बीबी व रहमान खां पति पत्नी है, किंतु पति के लिए पत्नी की देह पुरानी हो चुकी है। उसकी नजर बेटी फातिमा पर पड़ती है। अरमान बीबी फातिमा का विवाह करीम से कर देती है। वह पति के अत्याचारों को सहती है। उसकी पुत्री नसीमा को फातिमा की मृत्यु के पश्चात नानी के यहाँ भेज दिया जाता है। उसकी मौसी साजो का विवाह विपन्नता के कारण जुम्मन से होता है। मेहरुन्निसा परवेज लिखती है, मैंने भरसक गरीबी और लंगड़ाती हुई जिंदगी से जूझते हुए लोगों की मानसिक यंत्रणा को पकड़ने का प्रयास किया है। यही आकर मैं यथार्थ से जुड़ जाती हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ डॉक्टर मधु संधु, 68 महिला कहानीकार, पृष्ठ संख्या 22। पैराग्राफ चेंज, दूसरी ओर रब्बो और उसकी सौतेली माँ का एक ही पुरुष जमशेद से प्रेम चलता है। इसके पश्चात एहसान से प्रेम करती है और वह अपने उत्तरदायित्वों के कारण उससे विवाह नहीं कर पाती, जिस कारण गर्भपात करवाकर नानी उसका विवाह एक वृद्ध से करवा देती है। वह अत्यंत दुखी होती है, किंतु सब सह लेती है। नसीमा की दृष्टि में सबसे अच्छा चरित्र मोना का है, जो साहस के साथ अपने जीवन का सामना करती है। वह न हारती है न टूटती है। इस प्रकार मेहरुन्निसा परवेज अपने उपन्यास में जो परिवेश लेती है, उनके रहन सहन, सामाजिक रूढ़ी परंपरा सभी को यथार्थ चित्रित करती है। पैराग्राफ चेंज, पत्थर वाली गली उपन्यास का केंद्र मुस्लिम समाज और उसकी संस्कृति है। यह एक गरीब परिवार की कथा है। जेबा चूड़ियां बेचती है, समय पूछने के लिए दादा द्वार पर भेजी जाती है और यही कारण उसके बलात्कार का होता है। जेबा के पिता तस्कर है। वह अपनी पत्नी को अपने दोस्त के पास छोड़ जाते हैं। लौटने पर पत्नी के गर्भवती होने की खबर उसे आतंकित करती है और वह घर छोड़कर चला जाता है। जेबा का सदमा दादा की मृत्यु का कारण बनता है। मेहरुन्निसा परवेज की दृष्टि में जीवन स्वतंत्रता नहीं, सजा है। पैराग्राफ चेंज, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास में निम्न वर्गीय परिवार की सीमाओं में बंधी हुई नारी का घुटन संसार है। यह शिक्षित नारी के सामाजिक आर्थिक विषमताओं से उत्पन्न मानसिक यंत्रणा है। आज भी नारी का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक संस्कारों द्वारा संचालित होता है। सुषमा शिक्षित व आत्मनिर्भर है, किंतु वह सामाजिक मूल्यों से टकराने का साहस नहीं जुटा पाती। पारिवारिक उत्तरदायित्वों तथा समाज की निरंकुश वर्जनाओं के सामने अपनी भावनाओं को विसर्जित करती है। पृष्ठ संख्या 54। सुषमा सामंतवादी दृष्टि से पीड़ित नायिका इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है। उसके पिता रिटायर हो चुके हैं, माँ अपने परेशानियों से हार चुकी है। वह उसके जीवन में सबसे आगे हस्तक्षेप करती है। उसके भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी व घर का खर्च सब उसी के द्वारा चलता है। उसकी माँ उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। कॉलेज में एक दिन नील नामक युवक से उसकी मुलाकात होती है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। किसी पुरुष के आश्रय पाने की लालसा तो उसकी पूरी होती है, किंतु नील के बिछड़ने की याद उसे पीड़ित करती है। नील आयु में उससे छोटा है, इस कारण वह उसे किसी भी समय छोड़ सकता है। नील सुषमा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। वह उसे सभी बातें साफ बता देती है। नील उसके उत्तरदायित्वों का बोझ संभालने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु उसका अहम भाव उसे इस बात की स्वीकृति नहीं देता और नील को जाने के लिए कह देती है। मीनाक्षी द्वारा हॉलैंड जाने की खबर को सुनकर वह टैक्सी भेजती है। इस प्रकार सुषमा की दो तरफी मानसिकता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। पैराग्राफ चीन। सुषमा के माध्यम से अकेलेपन से पीड़ित प्रेम संबंधों के लिए यह एक जीवंत चित्रण है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, समाज में उचित सम्मान मिलने के बावजूद नारी का अंतर्मन उसे अकेलेपन के लिए कचोटता रहता है, जिसे हटाने के लिए संस्कार व सामाजिक वर्जनाओं का विद्रोह तो करती है किंतु हार भी स्वयं ही जाती है। सुषमा के जीवन में नील का आगमन मधुर कल्पनाओं को भर देता है। वह उसके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाती है। नील उससे छोटा है, उसका अंतःमन यह नहीं स्वीकारता, किंतु उसका अकेलापन उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है। नील के आने से उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। लेखिका ने स्वतंत्रता पूर्ण प्रेम संबंधों को उजागर करने के लिए प्रयास किया है। यह नील के प्रति तन मन से समर्पित हो जाती है। प्यार को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। सुषमा सीमा में नहीं, सामाजिक मानदंडों में आस्था तो नहीं रखती, किंतु उसके उत्तरदायित्व उसके पैर खींच लेते हैं। सुषमा के माध्यम से लेखिका ने आधुनिक समाज पर तीव्र व्यंग किया है। चरित्र और नैतिकता के खोखले आदर्शों के बीच तथा कथित लेखिकाएं सुषमा से नील के संबंधों को लेकर अपमान करने से नहीं चूकती। बाह्य रूप से नारी चाहे स्वतंत्र होने का प्रदर्शन जितना भी करे, किंतु जर्जर मान्यताओं से वह मुक्त नहीं हो पाती। पैराग्राफ चीन। सुषमा अपनी परिस्थितियों के कारण नील को त्यागती है। यह पलायनवादी दृष्टि है। इस उपन्यास में प्रेम की चरम सीमा का बदलाव अकेलेपन की स्थिति में होती है। इसका अंत दुखांत है। वह नील को सपने में पुकारती है। इस कारण यह यथार्थ न होकर काल्पनिक है, किंतु इसे पूर्ण रूपेण काल्पनिक न कहकर आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास कहा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास के केंद्र में नारी के सामाजिक भूमिका को अंकित किया गया है। राधिका के पिता विद्या नाम की लड़की से विवाह करते हैं, जो राधिका को स्वीकार नहीं है। वह अपने पिता का घर छोड़कर डैन के साथ विदेश चली जाती है। वहां डैन में अपने पिता को खोजती है, न पाने पर उसे छोड़कर वापस आती है और यहां इसे अक्षय और मनीष मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 55। किंतु इसकी यात्रा यहां भी समाप्त नहीं होती। लेखिका ने राधिका के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता की खोज की है। वह मानसिक रूप से किस प्रकार संतुष्ट होती है, राधिका अपने पिता के पास वापस जाती है, जिस पारिवारिक बंधन और सामाजिक मान्यताओं को निर्दयता पूर्वक कुचल दिया था, अंत में उन्हीं संबंधों से जुड़ने की कामना करती है, किंतु वह जुड़ नहीं पाती। उसकी माँ विद्या उसे समझाती है, किंतु वह नहीं मानती। राधिका के सामने बिखराव उसके खुद के बनाए हुए हैं। राधिका के सामने आर्थिक दृष्टि से कोई परेशानी नहीं है, किंतु वह किसी भी पुरुष से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। वह एक के बाद एक प्रेमी बदलती है, किंतु अंत में वह मनीष के साथ रहने का समझौता करती है। उषा प्रेमवता नैतिकता अनैतिकता के द्वंद में तो नहीं उलझती, बल्कि जीवन में स्थायित्व और सामाजिक संतुष्टि के लिए स्वतंत्रता की पक्षधर है। इस प्रकार राधिका इस उपन्यास में एक भावनाहीन पुतली सी बनकर रह जाती है। पैराग्राफ चेंज। हिंदी उपन्यास में महिला लेखिकाओं ने अपने परिवेश की बनावट व बुनावट में नारी जीवन से जुड़े सच की ही वाणी देने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने अधिकांशतः या नगरीय जीवन को ही केंद्र में लिया है, जहां नवीन नैतिक मूल्यों को उजागर करना पड़ता है, वहीं वे विदेशी पात्रों को चुनती हैं, किंतु ऐसा बहुत कम ही दिखाई देता है। उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग के उपन्यासों में सिवाय यह प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। करीब करीब अधिकांश लेखिकाओं ने परिवेश चाहे कोई भी उठाया हो, उसमें नारी जीवन या उसकी समस्याएं प्रमुख रूप से उजागर करने की कोशिश की है। भोगे हुए यथार्थ एवं अनुभूति की प्रामाणिकता के दबाव के चलते इन महिला लेखिकाओं ने हालांकि महानगरीय परिवेश को बहुतायत ग्रहण किया है और उसी में मानव मूल्यों के आधार पर नारी जीवन की स्थितियों एवं परिस्थितियों को देखने की कोशिश की है। पैराग्राफ चेंज। स्वातंत्र्योत्तर नारी लेखिकाओं की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि इन्होंने बार बार नारी द्वारा भोगे हुए यथार्थ को प्रामाणिक अभिव्यक्ति दी है। यह प्रामाणिकता उन्हें व्यापक सामाजिक संदर्भों से बड़ी स्पष्टता के साथ अलग करती है। ये लेखिकाएं नारी पात्रों के चरित्रों की मानसिक गहराइयों को अभिव्यक्त करने में सफल हुई हैं। परिवेश के प्रति इन लेखिकाओं की प्रतिक्रिया बहुत कुछ अंतर्मुखी, बौद्धिक, यथार्थ मूलक प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति से संबंधित है। परिवेश को प्रभावित करने या परिवर्तित करने के स्थान पर ये नारी पात्र उसके प्रभाव को मानसिक धरातल पर ढोते हुए तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए ये नारी पात्र मानसिक निजता, समाज परिवेशगत मूल्यों, मान्यताओं और नए व्यक्ति मानस की असंगतियों तथा क्रमशः पारिवारिक सामाजिक जीवन से उद्बुद्ध ट्रेजेडी को भोगते हुए दिखाए गए हैं। अतः इन लेखिकाओं के उपन्यासों के मूल में मानव के यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति है। समाप्त।